राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31/7/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम
की प्राप्ति स्वयं के द्वारा होता है। स्वयं का चेत स्वयं के द्वारा होता है या ज्ञान के द्वारा? ज्ञान का चेत मन बुद्धि के द्वारा होता है। परमात्मा की याद रखना है या प्राप्त परमात्मा को मानने शरण होने के बाद सब काम अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि काम पहले हो जाए बाद में माने, ऐसा अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा।
ढंग से आया नहीं थी, मैं तो इतना समझा हूँ कि स्वयं के द्वारा होता है तो ज्ञान के द्वारा होता है, और ज्ञान है जो मन बुद्धि के द्वारा होता है, और मन बुद्धि है उनमें काम जो आप साफ होता है करने से होता है। क्या होता है ये मतलब है कि नहीं? मैं ठीक से समझा नहीं हूं प्रश्न। प्रश्न ठीक से मुझे उत्तर क्या देंगे? यही है। हाँ तो ये बात गलत है। मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है, ये बात गलत है। मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है संसार का, परमात्मा ज्ञान नहीं होता। ये गलती है। परमात्म तत्व का बोध मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता, इसमें शंका बोलो।
स्वयं के द्वारा होता है,
स्वयमेव आत्मन आत्मानं वेत्सत्वं पुरुषोत्तम। स्वयमेव आत्मन आत्मानं वेत्सत्वं पुरुषोत्तम। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पास मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्टस्य च प्रज्ञस्य नुच्यते उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं दोषाभिः। तो आत्मना ही आत्मना ही होता है, मन बुद्धि द्वारा नहीं होता। ये यहाँ गलती है। और परमात्म तत्व का ज्ञान ज्ञान से होता है, स्वयं होता है। तो ज्ञान स्वयं स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान से कह दो चाहे स्वयं से कह दो कोई फर्क नहीं। कहीं ज्ञान से कह देते हैं, कहीं स्वयं से कह देते हैं। तो स्वयं की ज्ञान रूप है, ज्ञान भी स्वयं रूप है। ये दो चीज नहीं है ऐसा। अब इसमें शंका कुछ तुम्हारा संदेह रहा हो वो पूछ, निशंक पूछ। विषय को समझना चाहिए। सब भाई से मेरा कहना है कि तत्व ज्ञान होता है वो बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। देखो प्रकृति प्रकृति महान तत्वहंकार तस्मात गणेश षोडश का। प्रकृति से महत्व तो होता है, महत्व से यही होता है। तो प्रकृति कार्य है उसका, तो प्रकृति का ज्ञान भी महत्व से नहीं होता। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा पृथ्वी को भी अपने में नहीं समा सकता तो आकाश को कैसे बदलेगा? प्रकृति से उत्पन्न होती है होता है महत्व, तो उससे फिर गणेश सोर्स किए होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि इंद्रियां सब। तो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के जानने की भी ताकत नहीं है बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि कार्य है और प्रकृति कारण है। कारण में कार्य लीन हो सकता है, परंतु कारण को कार्य कब्जे में ले ले ये बात नहीं होती है कहीं भी। इस बात समझो ठीक तरह से, कार्य होता है वो कारण से पैदा होता है, तो कारण को कैसे कब्जे में करेगा वो नहीं कर सकता। ज्ञान संसार का ज्ञान बुद्धि से होता है, परमात्मा तत्व तो ज्ञान तो बुद्धि से नहीं होता है। परमात्मा तत्व ज्ञान क्या होगा, प्रकृति का ज्ञान भी बुद्धि को नहीं होता है। प्रकृति को मान लेते हैं, ऐसे परमात्मा को मान लेते हैं, मानने में तो काम आ जाती है, पर वो मान्यता भी दो तरह की होती है, मन बुद्धि की मान्यता और होती है, स्वयं की मान्यता दूसरी होती है। ये भी एक फर्क है, समझना है ये। आगे ख्याल में मानो मन बुद्धि के द्वारा एक अपनापन होते स्वीकृति होती है, एक स्वयं से स्वीकृति होती है, तो मान्यता भी स्वयं से होती है, वो बुद्धि मन बुद्धि से नहीं होती है। इसमें बोलो
स्वयं की मान्यता के लक्षण क्या है भगवान?
स्वयं के लक्षण होता है ये कि मानने के बाद में न मानना नहीं होता, स्वयं जब मान लेता है उसको मानने के लिए अभ्यास करना नहीं पड़ता, और उसको मान्यता हुआ मिटती नहीं है। जब तक वो मान्यता वो खुद को न मिटावे तब तक मिटती ही नहीं है वो मान्यता, और मन बुद्धि की भूल हो जाती है, वो भूल जाता है, वो अटल नहीं रहता है। मन बुद्धि की मान्यता अटल नहीं रहती, कमजोर पड़ जाती है, पहले मान्यता और पीछे और भूल जाती है। स्वयं की माननी हुई, स्वयं ही नहीं माने तो हो सकता है नहीं हो सकता, स्वयं को मान्यता संसार की मान्यता स्वयं से करी वो तो स्वयं मान सकता है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वयं से माननी मान्यता वो मान्यता बदलती भी नहीं, कभी नहीं बदलती। संसार की मान्यता बदल सकती है, बोलो और बोलो।
भगवान में मन क्यों नहीं लगे जितना लगना चाहिए?
वो तो भाई रात दिन चलते हो, ये बस कुछ ये पूछो, अब एक दूसरे बस छेड़ो मत। एक बात है उसके ऊपर तरह तरह की बात मत छेड़ो। अखबार का समय है ना सुबह का, बहुत कीमती है। ये बात पूछ ली छोटी डर पूछ ली कर दी, ऐसा नहीं है। अभी का समय बहुत कीमती है, तो इसी विषय में पूछो। मान्यता है उस विषय में जो ठीक गहरे समझ तो पूछो।
मानने के बाद में अगर बुद्धि में दिक्कत तो बुद्धि को छुट्टी देते हैं, ऐसा कह रहे हैं?
समझे समझे नहीं है ना, मान्यता को समझे ना बुद्धि को समझे, समझे नहीं है, समझ कर प्रश्न करो।
परमात्मा को मानने के बाद में भी बुद्धि में कभी संशय दिखाई दे?
संदेह नहीं होगा, संदेह होगा तो कच्ची है बात। बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा माननी है, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा मानने से भूल हो जाती है, बदल जाती है। ये मेरा कहना सुना नहीं आपने? बुद्धि की भूल होती है बदलती है, ये मैं पहले ही कह दिया। अब संदेह क्या है बोलो? बस ठीक बात है, परंतु संदेह नहीं है। मेरे एक संदेह और तो ठीक है, आपके संदेह नहीं है। नारायण 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 नारायण, स्वयं की जो स्वीकृति है, स्वयं का जो बोध है, वे दोनों ही अटल होते हैं। स्वयं की मान्यता भी अटल होती है, स्वयं का बोध तो अटल होता ही है। बोध तो इधर उधर होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। बोध पीछे इधर उधर हो जाए ये तो असंभव बात है, बोध हुआ ही नहीं है। एक बात और विलक्षण है कि बोध है वो दृढ़ अदृढ़ दो नहीं होता है, बोध दृढ़ ही होता, अदृढ़ होता ही नहीं। पुस्तक में आ जाता है दृढ़, मोक्ष को साक्षात गए तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ होता ही नहीं अपरोक्ष ज्ञान में। अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ दूसरे का नहीं होता, वो होता है जो कर्म सापेक्ष होता है उसमें होता है, कर्म में कर्म निरपेक्ष तत्व नहीं होता है। ये थोड़ी बारी की बात है, इस वास्ते ये मान्यता नहीं, मन बुद्धि की मान्यता नहीं है। मन बुद्धि देखो कि हाथ से कोई पकड़ेंगे तो हाथ से छोटी चीज को पकड़ेंगे, पर दीवार है उसको हाथ से पकड़ देंगे, जो बड़ी चीज कैसे पकड़ में आएगी। ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया संसार के विषय को तो पकड़ रहेगी, परंतु इनका कारण जो है वो अहं को भी नहीं पकड़ती। अहं का कारण है अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है, तो प्रकार से अहम बुद्धि को क्या प्रकृति को भी नहीं पकड़ पकड़ता, बुद्धि प्रकृति को ही नहीं पकड़ पाती, तो बुद्धि से अतीत तत्व कैसे पकड़ पाएगा। इनसे जो पैदा हुआ है वो छोटा है, जिनसे पैदा वो कारण है, तो कारण है उसको कार्य अपने कब्जे में नहीं ला सकता। और स्वयं कार्य नहीं है, स्वयं तो स्वयं है, ये कार्य कार्य ना पैदा होने वाला, कारण ना जिसने पैदा वो कारण, जैसे बाप है वो कारण है, बेटा कार्य है, जैसे मिट्टी कारण है घड़ा कार्य है, जैसे सूत कारण है और कपड़ा कार्य है, ऐसे कुम्हार है वो कारण है घड़ा कार्य है। कारण भी दूसरे का होता है, उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, तो कुम्हार और मिट्टी दोनों घड़े के कारण है, तो घड़ा तो घड़ा बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है, तो घड़ा ना तो कुम्हार को कब्जे में ला सकता है ना मिट्टी को कब्जे में ला सकता है, घड़ा दोनों का कार्य है। उपादान कारण तो सदा साथ में रहता है, वो होता वो निमित्त कारण जो साथ बढ़ जाता है साथ में नहीं रहता है। इस वास्ते कारण को कार्य अपने कब्जे में नहीं ला सकता, ऐसे बुद्धि से परमात्मा तत्वों का बोध नहीं होता।
उपादान साथ में रहता है,
मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े के साथ मिट्टी रहेगी ही, मिट्टी निकाल कर घड़े मिट जाएगा। सोने का गहना है, उसका कारण है सोना, एक है सुनार, तो सुनार तो है निमित्त कारण और उपादान कारण है सोना, और सोना गहने में से निकालोगे तो गहना नहीं रहेगा, उपादान कारण साथ रहता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी पुस्तक में पढ़ने से आता, पढ़ाई भी नहीं समझ में नहीं आती, सुनने से मान लेता था, सुनने से पढ़ाई हो गई समझ लेगा। ये बात तो परमात्मा सबका कारण है, तो परमात्मा प्रकृति के भी वश में नहीं होते तो बुद्धि के वश में कैसे हो जाएंगे। प्रकृति भी प्रकृति है, वो भी परमात्मा को नहीं पकड़ पाती, अनादि होने से प्रकृति नहीं है। अच्छा, और प्रकृति जो कारण है, एक और बात बता मैं ध्यान देकर आप सुनो, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है ये बात बरोबर ठीक है, परंतु पृथ्वी जितनी है वो केवल चिकनी मिट्टी नहीं है, घड़ा चिकनी मिट्टी से ही बनेगा, बालू से नहीं बनेगा, बाणे से नहीं बनेगा घड़ा। ऐसी पृथ्वी सबसे जितनी प्रकृति है वो सब की सब प्रकृति संसार उत्पन्न नहीं करती है, प्रकृति के किसी अंश में संसार की उत्पत्ति होती है, जैसे पृथ्वी के किसी अंश में चिकनी मिट्टी में ही घड़ा बन घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध मृत्यु वगैरह सती, चिकनी मिट्टी में ही घड़ा बनाने की ताकत है, चिकनी मिट्टी नहीं हो तो पृथ्वी घड़ा कर नहीं बना सकती। ऐसे संसार का निर्माण करने वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति के किसी एक देश में ही संसार पैदा होता है। प्रकृति के संपूर्ण में संसार पैदा नहीं होता। तो प्रकृति बिचारी जैसे बुद्धि बिचारी बात हो, प्रकृति के किसी अंश में है तो प्रकृति को कैसे पकड़ेगी। घड़ा तो किसी अंश में है पृथ्वी के, घड़ा बढ़ने की शक्ति भी संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी के किसी देश में है। ऐसे प्रकृति के किसी देश में बुद्धि की पैदावार नहीं है, संसार की पैदाइश है प्रकृति के बहुत थोड़े देश में। पृथ्वी में चिकनी मिट्टी थोड़ी होती है, दूसरी मिट्टी थोड़ी होती है, बताओ। घड़ा बनाने की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में है क्या? पृथ्वी के चिकनी मिट्टी के हिस्से में ही घड़ा बनाने की शक्ति है, और दूसरी पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें घर बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे प्रकृति के किसी अंश में संसार बनता है, सब अंश में नहीं बनता है। और वो प्रकृति घड़े में कैसे आ जाएगी? और प्रकृति का प्रकृति परमात्मा के किसी अंश में है, जैसे आकाश किसी अंश में तारा है, इस तरह से एक अंश में वो सब आकाश को कैसे पकड़ लेगा? तो बुद्धि बिचारी क्या करेगी? बुद्धि तो प्रकृति तक ही नहीं पहुंचती, प्रकृति के एक देश में पैदा होती है। ये समझ में नहीं आता पूछो, इनमें संदेह हो तो पूछो, ऐसी बात है। तो मन बुद्धि से आप मन को बुद्धि को परमात्मा में लगावे, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का जिसने करें, तो मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगा सकते हो। अरे मन बुद्धि को नहीं, जीव को लगा राम 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 कर सकते हो। मानो जिह्वा परमात्मा को पकड़ नहीं सकती, परंतु परमात्मा के सन्मुख हो सकती है। मन बुद्धि परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, परंतु मन बुद्धि परमात्मा के परायण हो सकते हैं। शरीर परमात्मा को पकड़ता नहीं, मन शरीर परमात्मा के परायण हो सकता है, भगवान की तरफ भी हो सकता है। तो कारण की तरफ कार्य सबके सब कारण की तरफ हो सकते हैं, मन कारण को पकड़ नहीं पाते, मन कारण में लीन हो सकते हैं, मन कारण कार्य में लीन नहीं हो सकता। घड़े सबके सब मिट्टी बन जाते हैं, बनी जाएंगे, बनेंगे ही, पर घड़े में किसी में मिट्टी नहीं आ जाएगी, किसी घड़े में। बड़े से बड़ा मुंड बना लो, बोगी बना लो, बड़े बड़े बना लो बर्तन, उन्हें पृथ्वी नहीं आएगी उसमें, कितनी बड़ी बना लो बनेगी। तो घड़ा बनाने की शक्ति भी पृथ्वी किसी एक अंश में है, सब अंश में नहीं है, तो उस पृथ्वी को घड़ा कैसे अपने में ले लेगा? ऐसे प्रकृति के किसी अंश में है ये महत्व, महसूस किसी अंश में अहमर बुद्धि ये है समस्ती, व्यस्तित विचार है ही क्या? व्यस्ति और समस्ती होता है, जैसे एक वृक्ष है वो व्यस्ति है, और वन है वो समस्ती है। बनवा सैकड़ों मीलों में जो जंगल है उसका नाम वन है, रूख एक है वो है उसका वन का एक अंश है, ये वन वृक्ष, वृक्ष वन अंश है और वन है वो अंश ही है। ऐसे महतत्व है परमात्मा की बुद्धि है, उसमें एक वृक्ष की तरह एक बुद्धि है बिचारी। तो वन भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वृक्ष के अंतर्गत कैसे आएगा? पर वन के अंतर्गत वृक्ष आ जाएगा, वृक्ष तो वन के अंतर्गत आ जाएगा, पर वृक्ष के अंतर्गत वन नहीं आ सकता। तो पृथ्वी के अंतर्गत तो स्थिति मिट्टी भी आते, पत्थर भी आ जाए, बड़ा भी आ, सब आ जाएगा पृथ्वी में, पर घड़े में तो, घड़े में तो चिकनी मिट्टी भी सब पूरी नहीं आ सकती। चिकनी मिट्टी सबकी सब एक घर में आ जाएगी, जिससे घड़ा बढ़ता है उसको भी घड़ी अपने नहीं समझ सकती, वो बेचारी एक देश में। तो बुद्धि प्रकृति को नहीं पहुंचती, प्रकृति का कारण परमात्मा है, उसको कैसे पकड़े? बुद्धि परमात्मा में लीन हो सकती है, घड़ा छोटे से छोटा है पृथ्वी में लीन हो सकता है, तो इसको डाल दो पृथ्वी मिट्टी मिट जाएगी। क्यों कारण मिल जाता कार्य। ऐसे बुद्धि को, मन को, शरीर को, सब क्रियाओं को, सबको भगवान के अर्पण कर दो, तो भगवान के अर्पण आप अपने आप को कर दो, अपने बेटा पोता को कर दो, अपनी धन जमीन जायदाद कर दो, अपनी पूंजी है उसको कर दो, अपनी जो अधिकार किसी सब भगवान के अर्पण कर दो, तो हो ही जाएगी ऐसी तो प्रगति का अर्पण तो हो ही जाएगी आपसे आप ही। घड़ा टूट फूट करके फिर से मिट्टी में मिल ही जाएगा, ऐसे सृष्टि सबकी सब प्रकृति में लीन हो ही जाएगी प्रलय होने पर, महाप्रलय होने पर, क्योंकि उसी की है उसी में लीन हो जाएगी। पर उसे उसको पकड़ कैसे सकती है, पृथ्वी को कैसे पकड़ लेगा, इस तरह से प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकते, तो प्रकृति के कारण परमात्मा को कैसे पकड़ेगा। परमात्मा ज्ञान मन बुद्धि से नहीं होता है, ये तो प्रकृति का कार्य है, और वो प्रकृति से अतीत है, इस वाले तत्व के जीवनमुक्त गुणातीत होता है, गुणों से भी अतीत होता है, तो गुण प्रकृति के उत्पन्न होने वाले सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति का कार्य है गुण, गुणों में गुणों से पैदा होते सृष्टि। इस वास्ते मन बुद्धि परमात्मा को कब्जे में नहीं ले सकते, मन बुद्धि भगवान के अर्पित होते, इस वास्ते मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दे, तो मेरे अर्पण तो सब कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका कारण है, तो उसके अंतर्गत ही सब है ही, अब उसको अलग करते हैं ये बंधन होता है, और उनसे अलग न करें तो बंधन होगा ही नहीं, मुक्ति हो जाएगी। स्वयं तो परमात्मा का अंश है साक्षात, तो उनकी प्रकृति बताई है तो उसको अपरावश्य तो वो परा प्रकृति है, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की भेदा वाली अपरा प्रकृति है, और वो जीव है परम परा प्रकृति, वो जीव स्वरूप है भगवान का। नारायण नारायण नारायण।